पेज नंबर 177 जही पक कलम कमलिनी निसनु अजहंत तरणी थेरव विसनु जही सुय पंतित सुप्रथियाव न वंसरी मरगए कंठियाव कंपतिव पीलन भय गया ही जही नंदन विनी मनोहराय नाचती व चल पल्लव कराय जही फादिम वेयनी दारिमाय नचांती ताय न कई मुहाय जही महुय पंतियु सुंदराव के अई केसर रथ धूसराव जही दखा मंडव परियलंती पुनु पंथिय रस सलीली पियंती इस चित्र की यथार्थता देखने योग्य है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म दृष्टा कवि होते हैं कि गांवों में भी उन्हें कमलों की बहार दिखाई पड़ती है। कहा भी तो है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। इसको सार्थक करने के लिए जरूरी है कि जहां रवि को भी कमल न दिखाई पड़े वहां कवि देख ले। लेकिन स्वयंभू के लिए पके धान की कलमें ही कमल हैं, और ये कलम के कमल भी सूर्य को न पा सकने के कारण विषण हैं। यह मगध देश ऐसा है जिसमें वंश्री की मरकत कंठी की तरह शुकपंक्ति है, जहां हवा के झोंकों में भयभीत गज की भांति कांपते हुए ईख के वन हैं, जहां वानरों के मुख की तरह कटे हुए लाल लाल दारिम हैं और द्राक्षा के मंडप लहराते रहते हैं। देश की संपन्नता का ये हाल है कि पथिक रस ही पीते हैं। हनुमान जब लंका से अयोध्या की ओर जाते हैं तो उनके दृष्टि पथ में अनेक देश और अनेक नदियां पड़ती हैं। स्वयंभू ने इनमें से एक पर विहंगम दृष्टि डाली है और दो तीन रेखाओं में उनकी सारी विशेषताएं आंक दी हैं। कावेरी प्रदेश के चित्र की एक रेखा देखिए, जही इंदनील कर विजमानु ससी थाय जुअन डपनु समानु। यह वह प्रदेश है जहां इंद्रनील का आधिक्य है। इसे व्यंजित करने के लिए कहा गया है कि वहां इंद्रनील की किरणों से भिदकर चंद्रमा जीर्ण दर्पण के समान हो गया है। स्वयंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, रनिवासों से लेकर जनपदों तक, राजकीय जल क्रीड़ा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका प्रवेश है। वे प्रकृति के चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं। पेज नंबर 178 चिंतन के आगार हैं। अपभ्रंश भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी कवि का फिर नहीं दिखाई पड़ा। अलंकृत भाषा तो बहुतों ने लिखी, लेकिन ऐसी प्रवाहमयी और लोक प्रचलित अपभ्रंश भाषा फिर नहीं लिखी गई। स्वयंभू सचमुच ही अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं। परवर्ती अपभ्रंश कवियों ने उन्हें वैसी ही श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। त्रिभुवन रामकाव्य की जो परंपरा स्वयंभू ने चलाई, उसे उनके सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवन ने आगे बढ़ाया। त्रिभुवन भी अपने पिता की ही भांति परम पंडित तथा कवि थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कोई पुस्तक न लिखकर पिता के काव्य ग्रंथ में ही परिवर्धन किया। पिता ने जिस पौमचर्यु को 83 संधि तक लिखकर छोड़ दिया था, उसमें त्रिभुवन ने 7 संधियां जोड़कर उसे 90 संधियों तक पहुंचा दिया। कथानक और चरित्र की दृष्टि से स्वयंभू ने पौमचर्यु को चरमोत्कर्ष पर ही ले जाकर छोड़ा था, लेकिन त्रिभुवन को उसमें कुछ कमी दिखाई पड़ी। कमी यह थी कि रामकथा की परिसमाप्ति अच्छी तरह जैन मत के अनुसार नहीं हो सकी थी। राम जिन धर्म में दीक्षित नहीं हो सके थे, उनका परिनिर्वाण शेष था, उन्हें जिन धर्म के विविध उपदेश सुनने को नहीं मिले थे। कुछ उपदेश मूलक इत्र कथाएं रह गई थीं और जन्म जन्मांतरों की चर्चा बाकी थी। योग्य पुत्र ने इन सबको अच्छी तरह उसमें खपाया। इतना ही नहीं, उनके कथन से मालूम होता है कि उन्होंने पिता के महाकाव्य के बीच में कुछ कड़वक जोड़े हैं। इस तरह वर्तमान पौमचर्यु स्वयंभू और त्रिभुवन दोनों ही की सम्मिलित कृति है, जिसमें निस्संदेह गुण और मात्रा दोनों दृष्टियों से अधिकांश स्वयंभू का है। ध्यान से देखने पर पिता और पुत्र दोनों की रचनाओं का अंतर स्पष्ट हो जाता है। भावों का उछल आवेग चित्रण की सादगी और भाषा का लोक प्रचलित प्रवाह जो पिता की रचना में है वह पुत्र की कृति में कहां। पंडिताई पुत्र में जरूर अधिक है। श्री मोदी ने अपभ्रंश पाठावली 83वीं संधि का सीय दिव्य कहानऊ त्रिभुवन स्वयंभू के ही नाम से ही दिया, लेकिन सभी दृष्टियों से वह स्वयंभू की रचना प्रतीत होती है। इतना होते हुए भी त्रिभुवन की यह गर्वोक्ति यथार्थ है कि तिहुवनो जैवी अनहोन्तु नंदनो सिरी स्वयंभू एवस काव्यम कुल कविता तो पच्छा को समुद्धरी। उद्धरण: निःसंदेहवान पुत्र की तरह स्वयंभू पुत्र त्रिभुवन ने भी अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के साथ ही उसे सुरक्षित भी रखा। पुष्पदंत: कालक्रम से अपभ्रंश साहित्य में रामकाव्य के दूसरे अथवा तीसरे महाकवु पुष्पदंत 10वीं शताब्दी ईस्वी हुए। इन्होंने उत्तर पुराण की 11 संधियों 69 पेज नंबर 179 में रामकथा का वर्णन किया है। पुष्पदंत ने रामकथा आरंभ करने से पहले उसकी जो परंपरा उद्धृत की है उससे मालूम होता है कि उन्हें स्वयंभू के काव्य का परिचय था। उन्होंने स्वयंभू का नाम बड़े आदर से लिया है। स्वयंभू के विपरीत पुष्पदंत ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में विशेष प्रकाश डाला है। महापुराण उत्थानिका और उसके अंत से उनके बारे में जो कुछ मालूम होता है उसका सारांश ये है कि वे काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। जन्मस्थान उनका संभवतः बरार में कहीं था। कुछ कारणों से ये जीवन के आरंभ में उत्तर अर्काट जिले के मेलाड़ी या मेलपाटी उद्यान में रहे और फिर वहीं महामात्य भरत से परिचय होने के बाद उनके साथ राष्ट्रकूट राजधानी मलखेड मान्यखे चले आए। जीवन के अंतिम दिनों तक पुष्पदंत मलखेड ही रहे। महामात्य भरत के मर जाने के बाद उन्हें भरत के सुयोग्य पुत्र नन का आश्रय प्राप्त हुआ। पुष्पदंत शुरू में शैव थे लेकिन अंत में जैन हो गए। स्वयं कवि के ही विवरण से पता चलता है कि उनकी अनेक उपाधियां तथा उपनाम थे, इनमें एक अभिमान मेरु भी थी। बड़े गर्व से उन्होंने अपने को अभिमान मेरु कहा है। निःसंदेह स्वभाव से वे बड़े ही अक्खड़ और स्पष्टवादी प्रतीत होते हैं। जिन दिनों वे मेलपाटी के उद्यान में थे दो राजपुरुष उनके पास आए। उन्होंने कवि से विशालपुरी छोड़कर निर्जन वनांत में रहने का कारण पूछा। इसके उत्तर में अभियान मेरु कहते हैं चमरानिल उद्दाव्य गुनाय अहिंसेय धोए गुयंतनाय डपुतालियाय अविवेयी मोहधई मारणशीलियाय विस्सह जम्मई जयुरतियाय ही लच्छिर व्यूस विरतियाय संपई जनु नीरस निविसेजु गुण्यंत जही सुरगुरु वी वेजु तही अमही कानु जी सरणु अहिमाने सहुए वरी हो उमरण। राजदरबार में कोई भला आदमी कैसे रहे। चवर की हवा से वहां सभी गुण उड़ जाते हैं। अभिषेक जल सारी सज्जनता को ही धोकर बहा देता है। इसी तरह की और भी विवेक विरोधी बातें हैं जिन्हें देखकर वन में ही रहना अच्छा है, क्योंकि उस विषाक्त वातावरण से तो कहीं अच्छा अभिमान सहित मरण है। पुष्पदंत की इस स्पष्टवादिता ने भरत मंत्री को आकृष्ट किया। उन्होंने विघटित प्रतिमा को अपने संरक्षण में लेकर रचनात्मक कार्य की ओर लगाया। महापुराण में राम की कथा पूर्वापर संबंध से सर्वथा मुक्त एक स्वतंत्र काव्यखंड की तरह दिखाई पड़ती है। कथा के पीछे जो उद्देश्य है उसमें स्पष्टतः पेज नंबर 180 ब्राह्मण परंपरा की रामकथा के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव है। साफ शब्दों में पुष्पदंत कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास के वचनों ने सबको प्रवंचित कर रखा है और इनके अतिरिक्त कुमार्ग के कुएं में पड़े हुए अन्य व्यक्तियों ने भी इसी तरह का भ्रम फैलाने में योग दिया है। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं। पौराणिक शैली के अनुसार यह रामकथा वक्ता श्रोता के प्रश्नोत्तर के रूप में कही गई है। श्रेणिक गौतम के सामने ये शंकाएं रखते हैं कि दशमुख दशमुखों के साथ कैसे पैदा हुआ, उसका पुत्र उसके जन्म से बड़ा क्यों था? वह राक्षस था या मानुष? क्या सचमुच उसके 20 हाथ और 20 आँखें थीं? क्या उसने अपने शिरों से शिव की अर्चना की थी? क्या वह राम के शर से मारा गया था? क्या लक्ष्मण के हाथ लंबे और स्थिर थे? सुग्रीव आदि क्या वानर थे? क्या वे नर नहीं थे? क्या विभीषण आज भी जीवित है? क्या कुंभकर्ण 6 महीने की घोर निद्रा में सोता था और सहस्र महिष खाता था? ये सब सच है या लोग ही असत्य कहते हैं? इन्हीं शंकाओं की पृष्ठभूमि पर जैन कवि पुष्पदंत अपनी रामकथा कहते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा शंकाशील मन इस तरह की अलौकिक बात को भरसक बचाए। इसके अतिरिक्त और भी अनेक बातें हैं जिनमें पुष्पदंत की रामकथा व्यास वाल्मीकि की रामकथा से भिन्न है। 1. अन्य राजकुमारों की तरह राम और लक्ष्मण भी थे। यहाँ तक कि अपने पूर्व जन्मों में वे भी साधारण आदमियों की तरह बुरा भला काम करने वाले थे। जैसे पूर्व जन्म में लक्ष्मण ने एक वणिक की स्त्री का अपहरण किया था। दशरथ के यहाँ जन्म लेने से पूर्व उनके 2 जन्म और हो चुके थे। दूसरे जन्म की तपस्या के फलस्वरूप ही उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और फिर दशरथ के घर जन्म हुआ। 2. राम की माता का नाम कौशल्या नहीं सुबला था। इसी तरह लक्ष्मण सुमित्रा के नहीं बल्कि कैकेयी के पुत्र थे। इससे राम वन गमन का प्रसंग ही बदल गया। 3. राम लक्ष्मण का जन्म अयोध्या नहीं काशी में हुआ था, क्योंकि दशरथ पहले काशी के ही राजा थे, अयोध्या तो वे पीछे गए। 4. राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनक का यज्ञ देखने स्वयं नहीं गए, बल्कि यज्ञ की रक्षा के लिए जनक ने ही उन्हें बुलवाया था। 5. सीता की अतिरिक्त राम के 7 पत्नियां और थीं। 6. सीता जनक कन्या नहीं बल्कि मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण की पुत्री थी, और उन्हें अनष्टेकर समझकर रावण ने मंजूषा में रखकर मिथिला में फेंक दिया था, जहां एक किसान को वे मिली और किसान ने उन्हें जनक को भेंट किया। 7. सीता का अपहरण रावण ने नारद के उत्तेजित करने पर किया, न कि किसी पूर्व वैर वश अथवा शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। पेज नंबर 181। सीता हरण पंचवटी में नहीं वाराणसी के समीपवर्ती किसी वन में हुआ। 9. वानर आदि वस्तुतः विद्याधर थे और राम की सहायता के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। 10. हनुमान रुद्र के नहीं बल्कि कामदेव के अवतार थे और लंका में वे मसक रूप धारण करके नहीं गए थे, ब्रह्म रूप धारण करके गए थे। 11. हनुमान सीता का पता नहीं लगा सके। 12. बाली को राम ने नहीं लक्ष्मण ने मारा था, और इस तरह रावण को भी उन्होंने ही मारा। 13. दशरथ की मृत्यु राम के लंका से लौटने के बाद होती है। 14. लक्ष्मण की मृत्यु रोग से होती है, और उनके मरने पर राम लक्ष्मण पुत्र पृथ्वीचंद्र को राज्य देकर स्वयं वैराग्य ले लेते हैं। 15. भरत और शत्रुघ्न की कथा प्रायः उपेक्षित रह गई। 16. राम श्याम वर्ण के नहीं बल्कि पद्म वर्ण है, श्यामवर्ण तो लक्ष्मण है। ब्राह्मण परंपरा की रामकथा से जैन रामकथा की इस विभिन्नता का कारण कुछ तो स्वदेशीय है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे रामकथा की एक दूसरी परंपरा का आभास मिलता है। उनके पीछे जान बूझकर विकृति लाने का कोई उद्देश्य नहीं प्रतीत होता। कथा प्रवाह में आने वाले मार्मिक प्रसंगों पर थोड़ी देर के लिए रुककर पुष्पदंत ने वर्णन को विस्तार दे दिया है। फिर भी 11 संधियों में इस तरह के वर्णन विस्तार की गुंजाइश ही कहाँ है। फलतः पुष्पदंत तेजी के साथ कथा प्रवाह के पीछे भागते चलते हैं। वैसे तो सफल कवि जहाँ भी हाथ लगाएगा कुछ न कुछ कर ही दिखाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पुष्पदंत का मन रामकथा में उतना नहीं रमा है। उनकी काव्य प्रतिभा का जौहर अन्यत्र दिखाई पड़ता है। स्वयंभू और पुष्पदंत द्वारा वर्णित रामकथाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि दोनों में कुछ अंतर है। पुष्पदंत में ब्राह्मणत्व विरोधी तत्व जितने अधिक हैं, स्वयंभू में उतने नहीं हैं। स्वयंभू से पहले रामकथा को काव्य का रूप देने वाले दो जैन कवि हो चुके थे। एक थे विमल सूरी, जिन्होंने पहली शताब्दी के आसपास प्राकृत में पौमचर्यु की रचना की। दूसरे रविशेन थे, जिन्होंने सातवीं शताब्दी में संस्कृत पद्मचरित लिखा। स्वयंभू ने रामकथा के विषय में विमल सूरी और रविशेन का पूरा अनुसरण करते हुए भी कई स्थलों पर ब्राह्मणत्व विरोधी बातों को या तो एकदम छोड़ दिया है या दो चार पंक्तियों में चलता किया है, अथवा उनका वर्णन अन्यमनस्क भाव से किया है। जैसे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति का प्रसंग स्वयंभू ने एकदम छोड़ दिया है। हरिशेन उपाख्यान में जहां ब्रह्मरथ और जिनरथ संबंधी विवाद है और उसमें जैन धर्म को ब्राह्मण धर्म से श्रेष्ठ कहा गया है, स्वयंभू ने संकेत पेज नंबर 182 भर करके रहने दिया है। और मरुत यज्ञ विध्वंस प्रकरण का वर्णन उन्होंने बेमन से किया है। इसका मुख्य कारण यही मालूम होता है कि स्वयंभू में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। जैसा कि खोज से पता चला है कि स्वयंभू न तो दिगंबर थे और श्वेतांबर, बल्कि वे अति प्राचीन यापनीय संघ के अनुयायी थे। यह संघ उदार विचारों का था। इस तरह धार्मिक मतभेद से कथा में भेद आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन स्वयंभू और पुष्पदंत की रामकथाओं में कुछ ऐसी भेदक बातें दिखाई पड़ती हैं जिनसे दो भिन्न परंपराओं का अनुमान होता है। पुष्पदंत ने विमल सूरी, रविशेन, स्वयंभू द्वारा वर्णित रामकथा के रहते हुए भी इन सब को छोड़कर श्वेतांबर मतावलंबी कवि गुणभद्र के उत्तर पुराण में वर्णित रामकथा का अनुसरण किया है। इसे देखकर प्रेमी जी ने अनुमान लगाया है कि ये कवि रामकथा की दो भिन्न परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. इतना होते हुए भी जैन कवियों को इस रामकथा में ब्राह्मण परंपरा की रामकथा से भिन्न कुछ उभयनिष्ठ बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इन्होंने अतिमानवीय प्रसंगों को बुद्धिसंगत और मानवीय रूप देने की चेष्टा की है, जैसे गंगा उत्पत्ति, वानरों की उत्पत्ति, रावण का दशानन होना आदि। इसी रावण के चरित्र को जैन कवियों ने अधिक पराक्रम युक्त दिखाया है और शूर्पणखा का चरित्र अपेक्षाकृत उज्ज्वल चित्रित किया है। यहाँ तक कि स्वयंभू ने उसका नाम चंद्रनखी दिया है। रामकाव्य के अन्य कवि अपभ्रंश में रामकथा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और भी कवि हुए होंगे, लेकिन जिनकी रचना का उल्लेख मिलता है वे 15वीं शताब्दी के रैधु कवि हैं। इन्होंने अनेक प्रबंध काव्य लिखे हैं, उनमें से जिसमें संभवतः रामकथा का वर्णन है वह पौम पुराण नाम से जाना जाता है। अभी तक वह ग्रंथ सामने नहीं आ सका है, इसलिए उसके विषय में कुछ भी कहना असंभव है। कृष्ण काव्य और स्वयंभू, जिस प्रकार राम जैन धर्म द्वारा स्वीकृत बलदेवों में से एक हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी 9 वासुदेवों में से एक हैं। फलत कृष्ण की कथा भी जैन साहित्य में वर्णित है। यदि रामकथा परमचर्यु पौम पुराण नाम वाले ग्रंथों में कही गई है तो कृष्ण कथा कहने वाले ग्रंथ हरिवंश पुराण कहे जाते हैं। अपभ्रंश में राम कथा की तरह कृष्ण कथा के सूत्रपात का श्रेय भी स्वयंभू को ही है। स्वयंभू ने पौमचर्यु के साथ ही हरिवंश पुराण की भी रचना की है। इस समय भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हरिवंश पुराण की जो प्रति सुरक्षित है उसमें कुल 112 संधियां हैं। 1. स्वयंभू का पौमचर्यु प्रथम भाग भूमिका प्री 0.1.5.2 जैन साहित्य और इतिहास प्री 0.277.85 पेज नंबर 183। अध्ययन करने से पता चलता है कि स्वयंभू ने केवल 92 संधियों की ही रचना की थी, जिनमें 13 संधियों का यादव कांड, 19 संधियों का कुरु कांड और 60 संधियों का युद्ध कांड है। 92 संधियों के बाद ग्रंथ अपूर्ण रूप में शेष रह गया है। इसके बाद उनके पुत्र त्रिभुवन ने 17 संधियां और जोड़ी। शेष 6 संधियां यशः कीर्ति की रचना मालूम होती हैं, जो 15वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। इतना सब जोड़ने के बावजूद हरिवंश पुराण का अधिकांश स्वयंभू की ही कृति है। स्वयंभू के हरिवंश पुराण के जितने अंश प्रकाश आए हैं, उनसे उनकी काव्य प्रतिभा की और भी पुष्टि होती है। श्री मोदी ने अपभ्रंश पाठावली में हरिवंश पुराण की क्रमशः 28वीं और 103वीं संधि उद्धृत की है, जिनमें एक महाभारत के विराट पर्व की कीचकवध कथा पर आधारित है और दूसरी एक तरह की धार्मिक प्रश्नोत्तरी है जो जैन धर्म के उपदेश के लिए गढ़ी गई है। यहाँ भी स्वयंभू द्वारा रचित प्रसंग में जो कथा रस और असहज भावोद्गार है, वह त्रिभुवन के तत्वचिंतन में नहीं है। मत्स्यराज का साला कीचक जिस समय सबके सामने सैरंद्री बनी हुई द्रौपदी का अपमान करता है, स्वयंभू उस प्रसंग को मूर्त कर देते हैं, तो तेन विलक्खी हुबैन अनुलग्गे जिह जमदुयन चिहुरेही धरेवी चलने ही हये पेखंत रायह मुच्छ गए मणि रोसु पवटिया बल्लव हो किर देई दिथ तरु पल्लव हो मरु मार्मी मच्छु स मेहनु पट्टवमी कयंत हो पाहुनु तो तव सुएन आयधन विनिवारियु चलनंगुट्टेन ओस्रियु वियोरु सनियु पुर वर गरियु आदनियु धिधि दाढ़ शरीरे काय कियु कुल जायह जायई मरण थियु जही पहु दुचरियु समायई तही जान सामन काय करी। उद्धरण चिन्ह। यमदूत की तरह कीचक ने द्रौपदी का केशपाश खींचा और उसे लात मारी। ये देखकर राजा युधिष्ठिर मूर्छित हो गए और भीम रोष के मारे तरु की ओर देखने लगे। 1. हेमचंद मोदी, अपभ्रंश पाठावली, 1935 ई0, टिप्पणी प्री 0-23-25, पेज नंबर 184, कि इसे किस तरह मारें। लेकिन युधिष्ठिर ने पैर के अंगूठे से उन्हें दबाकर मना किया। उधरपुर की नारियां व्याकुल होकर बोल उठी कि इस दग्ध शरीर को धिक्कार है, इसने यह क्या किया, कुलीन नारियों का तो मरण हो गया। जहां राजा ही इतना दुराचार करता हो, वहां भला सामान्य जन क्या करेंगे। नारी के प्रति स्वयंभू के मन में कितना बड़ा सम्मान है। जहां भी वे नारी को किंचित अपमानित होते देखते हैं, उनकी संपूर्ण मानवता कालाग्नि के समान धधक उठती है। यही नहीं, अवसर आते ही वे शक्तिमती नारी की शक्ति का उद्घाटन किए बिना नहीं रहते। अपमानित द्रौपदी दिन का सारा काम काज खत्म करके जब रात में भीम के पास जाती है और वे उसके दुख का कारण पूछते हैं, तो उस समय द्रौपदी का अपमर्षपूर्ण कथन सुनने योग्य है। महु कवनु सो छई कवन दही जही तुम वी वर्टी एह वही जो सामी सालु माह मंडल हो थियु हरिवी लच्छी आहंडल हो सो वही परिणामे सचरी धरी मच्छ हो नियच सेव करी जो मुद्रित पहारे दली गिरी जम खनु वी अन मैलई सुहई सिरी जे बगु हिडिम्बु किम मीरु जियु सो हु वही विसिन महांसियु जो बहु लद्धवरु खांडव दह दामर वा कम्मह वही वसिन सो जायई मलई शरीरु जमलास वाल धनवाल जही सैलिधि हूँ मी सुहु कवनु तही मही मंडली सैली गमिठाई किम वी खल दैवे दिठाई देसे देसत्रु भम्याइन वनी 12 वरसई गमियाई अहियई मासही एयारहि अवही वासर पनारही तो वी दुख किले सहो छेउ अन वी बरी मरनु न जीवियेसु हल कवि। ऐसे ऐसे शूरवीर और सुधी पतियों के रहते हुए भी द्रौपदी ने अब तक क्या सुख जाना। सुख पाना तो दूर, उल्टे वह इस तरह उनके सामने ही अपमानित हो रही है। यदि इसी का नाम जीवन है तो फिर मरण क्या है। पेज नंबर 185। और इस पर भीम द्रौपदी के आंसुओं को अपने स्वभाव के प्रतिकूल दर्शन के कड़े और रूखे हाथों में पूंछते हैं। संसार धर्म नहीं देखती, कहाँ सुख है तो कहीं दुख। पूर्वकर्मों का वृक्ष दो फल देता है। रावण द्वारा हरि जाने पर भी सीता को क्या थोड़ा सा भी दुख हुआ था। संसार धम्मु अनिरिक्खी सुहु केतियु केतियु दुखियु देई दुवी वी फलई पंचाली पुराई रुख। जहीनी रावणिन की सियाह थोड़ू दुखु। त्रिभुवन में यही दार्शनिकता चरम सीमा पर पहुंची हुई है। द्वारिका में नेमिनाथ का शुभागमन बड़े ही भव्य ढंग से होता है। सभी यादवों के साथ वासुदेव और बलदेव उनका स्वागत करते हैं और अंत में अवसर निकालकर बलदेव नेमिनाथ से जीवन और जगत के विषय में बड़े बड़े गूढ़ सवाल पूछते हैं और सर्वज्ञ नेमिनाथ एक एक कर उनका उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि एह तिहुने सारु भदारा धम्मु रणु भो महिहर धारा की दुल्लहु भो लखी जिन्नव पवज्जा नेहानु हे सिरी हर की सुहु लोया लोई महागुरु बा रहियु अहो मुसुमूरिय मुरु उद्धरण चिन्ह के जीवहो वैर्य तिथंकर को मो मै अच्छी हरी हर की पालनिव एथु सवन्ह ध सम्मतु सील ऐविन्ह की सुंदरु करनिज्जु दयारुह दानु पुजहो देवई तनुरुह के दु सहत्य सेसर सामिय पवर परिसहु खगवई गामिया की बलवंतहु समर विमददन जीव हो चिरु कय कम्म जनदन कवनु देव केवल धर लोइन दोस विविजहु हो मह सुअन कनु धम्मु जगी नानुपायन जीव दयावरु हे नारायण की संसार हो मूलु निरासव गुरु पमाव गुनही मनी केसव। उद्धरण चिन्ह पेज नंबर 186 की कट्ठ यरु सिद्धि अभाव अनांतनु जौ वर्माहव जीव अनिकायहो की दाद बंधनु स्नेहु भुवनोत्तम विवेह परिगगहु गेहिनी पुरुषोत्तम। उद्धरण चिन्ह जैसा विषय वैसी भाषा। ऐसी ज्ञान चर्चा में भाषा का थोड़ा बोझिल हो उठना अवश्यंभावी है। त्रिभुवन का जो कुछ भी सामने आ सका है उसमें पांडित्य की गरिमा के साथ ही भाषा का भारीपन भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक रुचि वालों के लिए त्रिभुवन के साहित्य में अधिक सामग्री मिल सकती है। जगह जगह उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पद्यबद्ध कर दिया है। बीच बीच में सुंदर स्तोत्र भी आ जाते हैं जिनमें एक धार्मिक व्यक्ति का विह्वल हृदय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कृष्ण लीला और पुष्पदंत स्वयंभू के बाद कृष्ण काव्य की परंपरा को आगे बढ़ने वालों में पुष्पदंत का नाम अग्रणी है। उत्तर पुराण की 12 संधियों 81-92 में उन्होंने हरिवंश पूरचना की है। रामकथा की अपेक्षा पुष्पदंत ने कृष्ण कथा में विशेष रस लिया है। इसमें महाभारत की कथा से भेद भी कम है और कथा प्रवाह के बीच काव्यात्मक स्थलों के चित्रण में भी उन्हें काफी सफलता मिली है। पुष्पदंत ने रुचि के साथ कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। किशोर कृष्ण और गोपियों की लीला का एक दृश्य इस प्रकार है। धूली धूसरेन वर मुख सरेन तिना मुरारिना कीला रस वसेन गोवाले गोवी हियाय हारिना रगतेन रमत रमंते मंथट धरियु भामंत अंते मंदिरत तोडिविया विट्टीयु अध विरोलियु दहियु पलटियु कावी गोवी गोविंदहु लग्गी अन महारी मंथनी भग्गी एयही मोलु देउ आलिगमु न तो मा मैलहु में प्रांगण काहिवी गोविही पंडुरु चेलु हरी तनु ते जायहु कालु मूड जलेन काय पखाली नी जद तू सहयही दखाली थन रसी चिरु छायवंतौ मायहिन समूह परिधावंतौ। पेज नंबर 187 महिस सिलावड हरिना धर्यौ न कर निवाधनाव परिसर्य दोहौ दोहन हत्थु समीरई सुई मुझ माहव कीलियु पूरण कत्थई अंगन भवना लुद वाल बच्छु वाले निरुधौ। इस तरह पुष्पदंत के कृष्ण भी कम नटखट नहीं हैं। कभी मथानी तोड़ देते हैं तो कभी आधा विलोया हुआ दही लुढ़का देते हैं। आंगन में बछड़ों के साथ दौड़ते फिरते हैं और हवा में दूध दुहने का अभिनय करते हैं। उधर गोपियां भी कम प्रगल्भ नहीं हैं। वे टूटी हुई मथानी का मूल्य आलिंगन मांगती हैं, और जब कृष्ण के आलिंगन से उनकी पांडुर चोली काली पड़ जाती है तो भोलेपन के कारण उसकी कालिमा दूर करने के लिए पानी से धोती हैं। ये प्रगल्भता और मूर्ता का अद्भुत धूप छाही मिश्रण है। कोमल प्रसंगों के अतिरिक्त पुष्पदंत ने कृष्ण की कालियदमन गोवर्धन धारण जैसी पौरुषमयी लीलाओं का भी चित्रण किया है। गोवर्धन धारण से पूर्व की प्रलयोपम वृष्टि का ये बड़ा ही नादानुरंजित चित्र है। जलु गलई झलझली गिरी भरी सरी सर तदयदी तदीपदई गिरी फुदी सिही अंड मरु चलड़ घुली जलु थलु वी गोल वी निरु रसियु भय तसियु थरहरहु किरमरी जाव ताव थिर भाव धीरेन वीरेन सर लच्छी जय लच्छी तनेन कहेन सुर थुइन भुयजुइन विथरियु उद्धरियु महिरौ देहियौ तम जयु महि विवरु फनी नियरु फुफुवई विसुमुयई परिघुली चलवली तरुणाई हरिनाई तट्ठाय नट्ठाय कायरी वन्यरी हिंसाल चंडाल चंडाय कंडाई तावसी पर्वसी दरियाई जरियाई गो बाधन परेम गो गोमी निभारु व जायो गिरी गोवधनु गोवधनेन उच्चायौ। कुल मिलाकर अपभ्रंश में जैन कवियों द्वारा रचित राम काव्य और कृष्ण काव्य एकदम ऐहिक ढंग का रचित काव्य ही है, जिसमें कहीं कहीं धार्मिकता का पुटा पेज नंबर 188 गया है, लेकिन दिव्यता और अलौकिकता का रंग प्रायः नहीं है और भक्ति भावना का तो उसमें सर्वथा अभाव है। हिंदी के भक्त कवियों के राम काव्य और कृष्ण काव्य से उनकी कोई तुलना नहीं है। पुष्पदंत का आदि पुराण जैन कवियों द्वारा रचे हुए पुराण साहित्य में रामायण और महाभारत की कथाओं से कहीं अधिक विस्तार उनके अपने तीर्थंकरों की जीवन गाथाओं का है। पुष्पदंत का अधिक काव्य कौशल उनके आदि पुराण में व्यय हुआ है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां उन्होंने राम के लिए केवल 11 संधियां दी हैं और कृष्ण के लिए 12 संधियां, वहां उन्होंने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए 37 संधियां लगा दी हैं। ये स्वाभाविक ही था। आदिपुराण में ऋषभदेव के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा के अतिरिक्त उनके दो पुत्र भरत और बाहुबली के भी क्रिया कलापों का वर्णन है। प्रथम दो संधियों में परंपरानुसार कवि का आत्म निवेदन विनय प्रदर्शन आश्रयदाता की प्रशस्ति दुर्जन निंदा सज्जन प्रशंसा ग्रंथ रचना का उद्देश्य वर्णित करने के साथ साथ ऋषभदेव के अवतार लेने के पूर्व की भव्य भूमिका बांधी गई है। इसके बाद ऋषभ अयोध्या नरेश के घर जन्म लेने का निश्चय करते हैं। इंद्रादि देवता पहले से ही बड़े पैमाने पर तैयारियां करते हैं। ऋषभ के गर्भ में आने के साथ उनकी माँ परंपरानुसार विराट स्वप्न देखती हैं और इन सब के बाद दिव्य शक्तिपुंज बालक ऋषभ का जन्म होता है। जब वे बड़े होते हैं तो अन्य राजकुमारों की प्रवृत्ति के विपरीत वे विवाह करना नहीं चाहते, लेकिन सभी राजकुमारों की तरह आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वे पिता की आज्ञा नहीं टाल पाते और एक की जगह दो विवाह करते हैं, एक जवई से और दूसरा सुनंदा से। थोड़े दिनों बाद जसवई से भरत पैदा होते हैं और सुनंदा से बाहुबली। ऋषभ अपने पुत्रों को सभी विद्याएं और कलाएं सिखाते हैं। ऋषभ संभवतः इसी तरह सुखोपभोग में जीवन बिताते रह जाते यदि एक दिन स्वयं इंद्र उनको उनके अवतार ग्रहण करने के महान उद्देश्य की याद न दिलाते। इस समय एक ऐसी घटना घटती है कि ऋषभदेव को जगत से वैराग्य हो जाता है। एक दिन राजसभा में नीलांजसा अप्सरा नाचने आती है और नाचते नाचते सहसा गिर पड़ती है और मर जाती है। ऋषभदेव को जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान होता है। वे भरत को अयोध्या का तथा बाहुबली को पोइनपुर का राजा बनाकर संन्यास ले लेते हैं और साधना के द्वारा कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके जिन धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। उधर वे जैन धर्म का प्रचार करते हैं और इधर भरत तथा बाहुबली धीरे धीरे अपने प्रताप का विस्तार करते हैं। इस तरह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भरत और बाहुबली में युद्ध होता है। बारी बारी से एक दूसरे को हराने के बाद अंत में बाहुबली को हार खानी पड़ती है। बाहुबली बड़े भाई को निष्कंटक राज्य करने के लिए छोड़कर पिता के परामर्श पर जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। पेज नंबर 189। इसके बाद भरत प्रातः अपने पिता के पास उपदेश लेने के लिए कैलाश जाया करते हैं। अंत में एक दिन भरत को स्वप्न होता है कि कैलाश शिखर हिल रहा है और अब वह गिरने ही वाला है। जानकार लोगों से जब वे इस स्वप्न का अर्थ पूछते हैं तो मालूम होता है कि यह ऋषभदेव के महानिर्वाण का प्रतीक है। भरत सबको लेकर कैलाश जाते हैं और बड़े ही भव्य ढंग से पिता का महानिर्वाण मनाते हैं। आदिपुराण यहीं समाप्त होता है। कथा प्रसंग में अनेक युद्धों, विजयों और देश देशांतरों के वर्णन के साथ ही राजनीति, धर्म, दर्शन और विविध विद्या विषयक गंभीर बातें हैं। कुल मिलाकर यह संपूर्ण पुराण अनेक सामाजिक राजनीतिक बातों का एक विश्वकोश है। जिस तरह महाभारत समाप्त करने के बाद व्यास ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि यदिहस्ति तदन्यत्र अनिहोस्ति न तत्क्वचित, उसी तरह महापुराण के अंत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि इस रचना में प्रकृति के लक्षण, समस्त नीति, छंद, अलंकार, रस, तत्वार्थ, निर्णय सब कुछ आ गया है। यहाँ तक कि जो यहाँ है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। धन्य हैं वे पुष्पदंत और भरत जिनको ऐसी सिद्धि मिली। इस तरह स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों ही कवि अपभ्रंश साहित्य के सिरमौर हैं। यदि स्वयंभू में भावों का सहज सौंदर्य है तो पुष्पदंत में बंकिम भंगिमा है। स्वयंभू की भाषा में प्रसन्न प्रवाह है तो पुष्पदंत की भाषा में अर्थगौरव की अलंकृत झांकी एक सादगी का अवतार है तो दूसरा अलंकरण का उदाहरण। इस अंतर के पीछे दोनों कवियों की जीवन चर्या है। स्वयंभू सुखी संपन्न गृहस्थ, संयत चित पुरुष और संतुलित मनीषी थे। वे भरे पूरे परिवार के बीच जीवन का पूर्ण उपभोग करने वाले मनुष्य थे। इसके विपरीत पुष्पदंत का आरंभिक जीवन अभावों और संघर्षों में बीता और सुखद आश्रय मिलने के बाद भी वे प्रायः एकाकी और निसंग रहे। असंतोष ने उनके जीवन में अद्भुत ढंग की तिक्तता, कटुता, आक्रोश और प्रतिक्रिया की भावना भर दी थी। यही सब देखते हुए स्वयंभू कृत पवम चरियु के संपादक डॉक्टर शून्य भायानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है और पुष्पदंत को भवभूति। स्वयंभू के काव्य की श्रेष्ठता का एक कारण संभवतः ये भी हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण पुष्पदंत की तरह संकीर्ण और सांप्रदायिक न था। जैन मत को मानते हुए भी उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का पालन किया। जीवन की वास्तविकता को उन्होंने भरसक पूर्वाग्रह रहित होकर यथार्थ रूप में चित्रित करने की चेष्टा की। आदर्श की इस उच्चता और मानवता ने उनके काव्य को अत्यधिक व्यापकता तथा सर्व हृदय स्पर्शिता की शक्ति प्रदान की। पुष्पदंत की तरह उन्होंने हर जगह जिन शासन की ही प्रधानता नहीं दिखाई है। स्वयंभू के अभिमयु पेज नंबर 190 ने मरते समय जिस देवता की वंदना की वह सभी प्रकार के धार्मिक विग्रहों से ऊपर है। सुहदन एम चवंतैन सो सुमिरिंग देव मरंतैन, जो सवह देमपह अगलऊ तैलोक सिहरे जसु थावलऊ, जे अठवी कमी निजियई जे पचेदी परिजियई, जे अधरवी महारिस मौखु गए जसु तने धम्मे थिय जीव दये, जे नासियु जाय जरा मरनु सो सब वहो तिहुयन हो जे सरनु। जो वही निरंजन परम छवि, जसु सोऊ वियोऊ विनासु नवी। जो अना इव नुसऊ निवतिय, अनपयत्थ एकवि जासु किया। जो निकलु संतु पराहिप्रु, नारायणु दिन्यक वैस्वनु, सियु वरुनु हुवासनु ससी पवनु। जो होऊ सु होऊ थुन्तु थियु, एकंते करपिनु कालु कियु। 1:05:5:13:0:11:10 अभिमन्यु ने उस देव को स्मरण किया जो सभी देवों में अग्रणी है, जिसका स्थान त्रैलोक्य शिखर पर है, जिसने आठों कर्मों को जीत लिया है, जिसने पंचेंद्रियों को पराजित कर डाला है, जिस आधार बनाकर महर्षियों ने मोक्ष प्राप्त किया, जिसके धर्म में जीव दया का स्थान है, जिसने जन्म जरा मरण का नाश कर दिया है, जो सभी त्रिभुवन की शरण है, जो निरंजन परम छवि वहन करता है, जिसे लोक वियोग विनाश नहीं होता, जो नर है न स्त्री है और न नपुंसक है, जो एक भी क्रिया में भाग नहीं लेता, जो निष्कल अविभाज्य है, सतत है, परात्पर है, जो नारायण दिनकर वैश्रवण शिव वरुण हुताशन शशि पवन है। वह चाहे जो हो अभिमन्यु उसे एकांत भाव से स्मरण करके मर गया। उद्धरण चिन्ह। इन पंक्तियों में अभिमन्यु ने परम देव के विषय में जो बातें कही हैं वह स्वयंभू के विचार भले ही न हो, परंतु इनसे पता चलता है कि स्वयंभू अपनी रचना के पात्रों के धार्मिक विचारों पर अपने मत का आरोप करना अच्छा नहीं समझते थे। अपने निजी विचारों से अपने पात्रों को स्वतंत्र रखने से बढ़कर पूर्वाग्रहहीनता और क्या हो सकती है? वास्तववादी कवि ही ऐसा कर पाते हैं। स्वयंभू की उच्चाशयता में है उनकी श्रेष्ठता का, यही रहस्य है। जैन परंपरा के अन्य पौराणिक पुरुषों संबंधी काव्य, जिस तरह महाभारत और रामायण के एक एक चरित्र को लेकर संस्कृत के परवर्ती कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की, उसी प्रकार पुष्पदंत के महापुराण के मुख्य शलाका पुरुषों के जीवन चरित को लेकर अपभ्रंश के जैन कवियों ने चरित काव्य लिखे। इनमें तीर्थंकर नेमिनाथ, चक्रवर्ती बाहुबली तथा शालिभद्र का एक डॉक्टर शून्य भायानी द्वारा पौमचर्यु भूमिका प्री 013 पर उद्धृत पेज नंबर 191 चरित्र ऐसा ही है। नेमिनाथ को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य हरिभद्र सूरी 1159 का लिखा हुआ नेमिनाथ चरियु है। हरिभद्र सूरी का नेमिनाथ चरियु लगभग 7 संधियों और 803 श्लोकों का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अत्यधिक अलंकृत और समास बहुल है। प्रायः प्राकृति चित्रणों में पुरानी रूढ़ियों का ही पालन अधिक है, जैसे प्रभात वर्णन का यह अंश वियलिर तिमिर धम्मिलु परिसिर तपनु तारा वसुन कलैलंत तरु सिहर पक्षिया परिसंदिर कुसुम महु विन्दु मिसिने पी वर्दक्षीय अर्थात तिमिर धम्मिल केश तपन से विदलित हो गए, तारक वसन खिसक गए, तरु शिखरों के पक्षी कुलकुल करने लगे और बड़ी बड़ी आँखों जैसे कमलों से मधुबिंदु टपकने लगे। लेकिन राग रंग के वर्णनों में इस भाषा ने वातावरण उपस्थित करने में विशेष सफलता दिखलाई है, जैसे वज्जंत गजजंत बहु भान्य तूर लभिजंत दिजजंत कपूर पूर पनचंत नचचंत वैसा समूह दसिजंत हिदंत वाव्यंतुहम एंत गच्छंत चित्थत बहुसज्जन लेंथ वियरंत सुयसंत जन रंजन खंत पिजंत दिजंत बहुभक्ष्यम लोय उल्लस्य बहु भेय मनसुख्यम धावंत कीलंत वग्गंत खुज जय गण निवटंत वालय जन वंत उठेत। नेमिनाथ के चरित पर जो दूसरा अपभ्रंश ग्रंथ प्राप्त है वह है विनयचंद सूरी 1200 कि नेमिनाथ चुपड़ विनयचंद ने संपूर्ण काव्य चौपायों में लिखा है। रचना बहुत बाद की मालूम पड़ती है, फिर भी काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की यह पहली कृति है जिसमें बारहमासा मिलता है। इससे पहले संस्कृत और प्राकृत की परंपरा के अनुसार प्रायः षडितु वर्णन ही दिखाई पड़ता है। हिंदी में ये बारहमासा ही अधिक लोकप्रिय हुआ। नेमिनाथ जब वैराग्य ले लेते हैं तो इनके वियोग में उनकी पत्नी राजल देवी अथवा राजमती विलाप करती हैं। ऐसे ही मार्मिक विरल विलाप का पुंज नेमिनाथ चुपाई का ये बारहमासा है। ये बारहमासा सावन से शुरू होकर अषाढ़ में समाप्त होता है। इसके कुछ महीनों के वर्णन की बानगी देखिए। 1. डॉक्टर शून्य याकोबी द्वारा उसका एक अंश सनिकुमार चरयु संपादित 1921 ईशून्य 2. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह 1920 में संग्रहित पेज नंबर 192 श्रावणी सर्वनी कंडू मेहु गज जई विरहिनी झिज जई देहु विज्जु झबकर रखसी जेव नेमिही विनु सही सहियई केव भाद्रवी भरिया सर पिक खेवी सकरुन रोई राजल देवी हा एकलडी मई निर्धार किम उवेशिसी करुणासार भनी सखी राजल मन रोई नीठुरु नेमी नर अपनु होई सिंचिय तरुवर पारी पलवंती गिरिव पुनिकड देरा हुंती साचव सखी वरी गिरी भिजंती किमई न भिजई सामल कंती धन वरिसंतर सरफुटमती साइरु पुन धन ओहदुलिंती कत्तिग क्षित्तिग उगई सांझ रजमती झिझियु हुई अति झंझ फागुन वागुन पन पदंती राजल दुखी की तरु रोयंती चैत मासी विनसई पनगुरड़ वनी वनी कोयल टहका करी सावन में बिजली का झबकना भादों में आँखों के सामने भरे ताल का लहराना कार्तिक में क्षितिज पर उगती हुई सांझ फागुन में पेड़ों से पत्ते के आंसू झरना और चैत्र में वन कोयल का टहका करना ये सभी ऐसी बातें हैं जो बिरही तो बिरही स्वस्थ मन को भी अन्ना कर देती हैं। विनयचंद्र ने एकदम हल्की फुल्की भाषा में प्रकृति का चित्र खड़ा कर दिया है, साथ ही सीधे सादे ढंग से नारी हृदय की व्यथा भी कह दी है। वियोग के ऐसे मार्मिक वर्णन अपभ्रंश साहित्य में कम हैं। नेमिनाथ की ही तरह बाहुबली का भी चरित्र अत्यंत काव्योपम है, परंतु नेमिनाथ का चरित्र जहां कोमल भावों का आलंबन है वहां बाहुबली का व्यक्तित्व शौर्य का प्रतीक है। बाहुबली को लेकर लिखे हुए अपभ्रंश काव्यों में शालभद्र सूरी 1184 ईशून्य का बाहुबली रास अत्यंत प्रसिद्ध है। शालभद्र ने बाहुबली की एक मुनि जिन विजय द्वारा भारतीय विद्या वर्ष 2 अंक 1 में प्रकाशित पेज नंबर 193 सेना की जय यात्रा का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया है। शौर्य का ऐसा ओजस्वी वर्णन जैनों के धार्मिक साहित्य में कम मिलता है। चपल घोड़ों की यह चाल देखिए। हीसे हसेगिसी हनहनी तरवर तार तोषार खंडी खुरली खेडविय मन मान असुवार पाख पंखी की पंखरू उदाव दही जाए हूफी तलपी ससी धसी जडी जकारिय धाय फेरी फेकारी फोरनी फोड फेनावली फार तरणी तुरंगम समतुली देजिया तरल ततार और इस वर्णन के साथ ही गजों भटों और घोड़ों के कारनामों का भी एक चित्र गड गडंत गए गडिया गेली गिरिव धाली गूगलिय गुलनई चलंत करिय ऊलैली जुडी विरी भई हडी खेदी खडखई खडाखडी धनी धुनी धोस्वी दंतु दो तड़ा तड़ा तडी खुरतली खाली खनंती खेदी तेजिया तरवरिया समी धसी धसमसी सादी पय सी पाशारिया इसमें चेष्टित अनुप्रास और कोरी नादानुकृति की ही छटा नहीं बल्कि चित्र की गतिशीलता और सक्रियता भी है। चरित काव्य नागकुमार चरित पौराणिक पुरुषों पर लिखे गए काव्य के अतिरिक्त अपभ्रंश के जैन साहित्य में कुछ ऐसे चरित काव्य हैं जो उस परंपरा के कुछ लोक प्रिय व्यक्तियों को लेकर लिखे गए हैं। नागकुमार यशोधर करकुंड आदि कुछ ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको लेकर जैन कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। अपभ्रंश में नागकुमार के चरित से संबंधित सबसे प्रसिद्ध काव्य पुष्पदंत का नागकुमार चरित अथवा नायकुमार चरियु है। नागकुमार चरित पुष्पदंत की दूसरी रचना है। इसे उन्होंने महापुराण के बाद भरत मंत्री के पुत्र नन के आश्रय में लिखा था। नौ संधियों के इस छोटे से प्रबंध काव्य में श्रुत पंचमी का महात्म्य बतलाने के लिए नागकुमार की कथा सुनाई गई है। नागकुमार मगधदेशीय कनकपुर के राजा जयंधर की दूसरी रानी पृथ्वी देवी के पुत्र थे। जयंधर की पहली रानी विशाल नेत्रा थी और उससे उन्हें श्रीधर नाम का एक पुत्र भी हुआ था। राजा ने दूसरी शादी यों की कि उनके यहाँ एक दिन एक अद्भुत व्यापारी आया और उसने राजा को गिरिनार की राजकुमारी पृथ्वी एक हीरालाल जैन द्वारा कौंजा सीरीज में संपादित 1933 ई